कुंज विहारी जय गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जनावल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नश्च प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भूमिज्ञाद्विरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुधाभदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधाकृष्णपादान् सगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवाशवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। నమో మహాదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషై నమః. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధౌ దీనబంధౌ జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. జయతాం శరతోర్పంగుర్ మామందమతేర్గతి మత్సర్వస్వాపదాంబూజో రాధామదనమోహనో దివ్యవృందారణ్యకల్పద్రుమాదః శ్రీమద్రత్నాగారసింహాసనస్థౌ శ్రీమద్రాధాశీలగోవిందదేవో హృష్టాలిభిర్సేవ్యమానో స్మరామి. శ్రీమాన్ రాసరసారంభే వంశీవటతటస్థితః కర్షం వేణోస్వనేర్గోపీర్గోపినాథః శ్రీయస్తు నః. సప్తకాంచనగౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. నమస్యే పురుషం త్వాధ్యమీశ్వరం ప్రకృతే పరాం అలక్ష్యం సర్వభూతానాం అంతర్బహిరవస్థితం మాయాజవనికాచన్నం అజ్ఞాదోక్షజమవ్యయం న లక్ష్యసే మూఢదృశా నటో నాట్యధరో యథా. తథా పరమహంసానాం మునీనామలాత్మనాం భక్తియోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహే స్త్రియః. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. యథారిషికేశకలేన దేవకీ కంసేన రుద్ధాదిచిరం సుచార్పితా విమోచితాహం సచాత్మజా విభో త్వయైవ నాథే నమో విపద్గణాత్ విషాన్మహాగ్నే పురుషాదదర్శనాత్ అసత్సభాయ వనవాసకృచ్ఛతః మృధే మృధేనేకమహారతాస్త్రతో ద్రౌమ్యస్త్రతశ్చాస్మహరేరభిరక్షిత. విపద సంతు శశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యత్ అపునర్భవదర్శనం. జన్మైశ్వర్యశ్రుతశ్రీభిర్ఏదమానమదపుమాన్ నైవార్యత్యభిదాతుం వై త్వామకించన గోచరం. మన్యే స్థితాయ నివృత్త గుణవృత్తయే ఆత్మా రామాయ శాంతాయ కైవల్యపతయే నమః. మన్యే త్వాం కాలమీశానం అనాది నిధనం విభుం సమం చరంతం సర్వత్ర భూతానాం యన్మితకలిహి. నవేద కశ్చిద్ భగవాన్ శ్రీకీర్షితం తవేహమానస్య నృణాం విడంబనం. నయస్య కశ్చిద్దైతోశ్చికర్హి చేద్ ద్వేషశ్చ యస్మిన్ విషమామతేర్మిణాం. జన్మ కర్మ చ విశ్వాత్మన్ అదస్యా కర్తురాత్మనః తిర్యన్ ఋషిషు యాదుషు తదత్యంత విడంబనం. గోప్యాదే త్వయి కృతాగసిదామతావత్ యాతే దశాశ్రుకలిలాంజన సంభ్రమాక్షం. వక్త్రం నినీయ భయభావనయా స్థితస్య సామాం విమోహ్యతి బిర్యప్యద్విభేతి. కేచిదాహురజం జాతం పుణ్యశ్లోకస్య కీర్తయే యదోః ప్రియస్యాన్వావయే మలయస్యేవ చందనం అపరే వసుదేవస్య దేవక్యాం యాచితోభ్యగాత్ అజస్త్వం యస్య క్షేమాయ వదాయ చ సురద్విషాం ఆరావతారాణ్యన్యే భువో నావైవో దదో సీదంత్యా భూరిభారేణ జాతో యాత్మభువార్తితః భవేస్మిన్ క్లిశ్యమాణానాం అవిద్యా కామకర్మభిః శ్రవణస్మరణార్హాణి కరిష్యన్నితి కేచన శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతవీక్షణశః నమంతి నందంతి తవేహితం జనాః తయేవ పశ్యంత చిరేణ తావకం భవ ప్రవాహో పరమం పదాంబుజం అద్యతనస్తం సకృతే హిత ప్రభో జిహాసతి సుత్సుహృదోనుజీవినః ఏషాం న చాన్యద్భవద పదాంబుజాత్ నారాయణం రాజసు యోజితాం హసాం కేవయా నామ రూపాభ్యాం యదుభిః సహ పాండవాః భవతో దర్శనం యర్హి ఋషికానామివేషితుః నేయం సోవిష్యతే తత్ర యతేదానీం గదాధర త్వత్కదైరంకితా భాతి స్వలక్షణ విలక్షితైః ఇమే జనపదా స్పృద్ధ్వా సుపక్వౌషధి విరుద్ధః మనాద్రినిదన్వంతో యేదంతే తవ వీక్షితై అథా విశ్వేశ్వ విశ్వాత్మన్ విశ్వమూర్తే స్వకేషు మే స్నేహపాశమిమాం చింది దృఢం పాండుషు వృష్ణిషు త్వయి మే అనన్య విషయ మతిర్మధుపతే స్వకృత్ రతిం మధ్వదా దద్ధాత్ గంగేవౌదౌదన్వతి శ్రీకృష్ణ కృష్ణ సఖా వృష్ణి వృషభాన విద్రక్ రాజన్య వంశదహనాన్నపవర్గ వీర్య గోవింద గోద్విజసురార్తిహరావతార యోగేశ్వరాయ కిల గురో భగవన్నమస్తే యోగేశ్వరాయ కిల గురో భగవన్నమస్తే సర్వశాస్త్రాబ్ది పీయూష సర్వవేదిక సత్ఫల సర్వసిద్ధాంతరత్నాఢ్యా సర్వలోకైక దృక్ప్రద సర్వభాగవత ప్రాణ శ్రీమద్భాగవత ప్రభు కలిద్వాదోదిదాదిత్య శ్రీకృష్ణ పరివర్తిత పరమానంద పాఠాన్య ప్రేమవర్షక్షరాయతే సర్వానంద సర్వసేవ్యాయ శ్రీకృష్ణాయ నమోస్తుతే మదేకబంధో మత్సంగిన్ మద్గురో మన్మహాదన మన్స్తారక మద్భాగ్య మదానందో నమోస్తుతే అసాధు సాధుత దాయన్నదినీచోచ తారక ఆనామం చక్కదా చిన్మాం ప్రేమ్నా హృత్కంఠయో స్పృహ. కృంతి మహారాణికి ప్రార్థనకి అంతర్గత అంకల్ కేసే భగవాన్ కో లోగ్ నహీ జాన్ పాతే యా క్యో నహీ జాన్ పాతే ఉస్కే విషయ మే హమ్నే చర్చా కియా. సబ్సే పహలా కారణ హై లోగ్ భగవాన్ కో నహీ జాన్నే కా ఓ హై అహంకార్. అహంకార్ కే వజహ సే నహీ జాన్ పాతే. ఇస్తే జన్మైశ్వర్య శ్రుతశ్రీభిర్ యదమాన మదప్పుమాన్ నైవార్హతి అభిదాతుం వై త్వామ కించన గోచరం. సో కుంతిమారిణి కేతి హై హే భగవాన్, ఆప్ అకించన గోచర్ హై, అకించనో కే ద్వారా హీ ఆప్ జాన్ సక్తే హో, లేకిన్ జిన్కే పాస్ యే చార్ చీజే హై, జన్మ ఊంచే పరివార్ మే జన్మ లేనా, ఐశ్వర్య శ్రుత శ్రీ, యే చార్ చీజోన్ సే అహంకార్ ఉత్పన్న హోతా హై. అహంకార్ జో హై వో ఆప్కో ప్రాప్త్ కర్నే కే లియే నైవ అర్హతి, యే డిస్క్వాలిఫికేషన్ బన్ జాతా హై. తో వైసే హమ్నే ఇస్కే ఊపర్ కల్ చర్చా కియా తా, కిస్ ప్రకార్ యే చార్ చీజే హోనా సమస్యా నహీ హై, సమస్యా జో హై ఇన్ చార్ చీజే మేరే పాస్ హై, మే యే హూ, మే ధనవాన్ హూ, మే బ్రాహ్మణ హూ, యా మే బడే పరివార్ మే జన్మ లియా హూ, మే విద్వాన్ హూ, యా మే సుందర హూ, యే సమస్యా హై. సమస్యా సుందరత सुंदर होने में नहीं है, ये सोचने में कि मैं सुंदर हूँ। समस्या धन, धन होने में समस्या नहीं है, ये समस्या ये सोचना कि मैं धनवान हूँ, इसको अहंकार कहा जाता है। तो अगर किसी के पास ये चार चीज़ें हैं तो अहंकार को दूर करने के लिए तो इनको सेवा में लगाना चाहिए, जिसके द्वारा हम सेवा की भाव से अहंकार से मुक्त होंगे, तब भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी बनेंगे। अगर आप देखेंगे जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये असुर को सूचित किया जाता है। आप पिछली बार एक बार आया था तो डेमन्स इन वृंदावन, इसके ऊपर सेमिनार दिया था इधर। तो उधर जन्म बड़े ऊंचे परिवार में जन्म लेहें का अहंकार किसका था? ब्राह्मणों को था। भगवान ने द्विज पत्नियों को उद्धार करके ब्राह्मणों को अहंकार था, बड़े ऊंचे परिवार में जन्म लेने का उनको उन्होंने खंडन किया, उनको नाश किया। जन्म ऐश्वर्य बड़े संपत्ति नल कुबेर मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के पुत्र है, उनको इतना अहंकार था कि हमारे बराबर का कोई नहीं है, हम धन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। धन से उत्पन्न अहंकार जो है ये इसके वजह से व्यक्ति नशा करता है, विचार करता है, भले उनके पास कोई गुण क्यों ना हो, कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वो डंबित हो जाता है। ये धन ऐसा चीज़ है व्यक्ति को इतना मूर्ख बना देता है, भले वो सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं बहुत सुंदर हो क्योंकि धन है उनके पास, तो मान के बैठ जाता है। इसलिए अहंकार भी दो प्रकार का, एक है सच में सुंदर है और ये मान के बैठा कि मैं सुंदर हूँ, दूसरा है बंदर जैसा लेकिन फिर भी सोचता है कि मैं सुंदर हूँ, इसको डंभ कहा जाता है, डंभ। जैसे नलकुबेर मणिग्रीव करते हैं जिनका गले के ऊपर कड़ा मणि जैसा था, दिखते में एकदम बिल्कुल बदसूरत थे वो, लेकिन उनको ऐसा था कि बस दुनिया में हमारे जैसा कोई हीरो है ही नहीं, क्योंकि सब लोग स्तुति करते थे, वाह वाह कितना सुंदर हो, क्योंकि धन है ना, कोई अगर स्तुति करता है धनवान को थोड़ा धन मिलता है, धन की आशा रहती है। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुता, श्रुता और जन्म ये दोनों साथ में था कृष्ण ने, श्रुता जो है तृणावर्त को सूचित करता है, तृणावर्त का जो अहंकार था ये श्रुता, ये चार चीज़ों से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है उनमें से चार में से सबसे डेंजरस है श्रुता, श्रुता मतलब विद्वत्ता, विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ अहंकार जो है हमको इतना धोखा दे देता है। जैसे तृणावर्त ने सोच किया था कि मैं कृष्ण को पकड़ लिया अपने हाथों में और उसको उड़ा के लेके जा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ने भी ऐसा बताया ठीक है मुझे जितना ऊपर जाना है तो लेके जाओ। रावण को ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने पूरा संसार को मुट्ठी में बांध लिया है, कृष्ण को पकड़ लिया है, उसको ऊपर लेके जाऊंगा, उसको मार दूंगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन जब समय आया तो क्या हुआ, ऊपर जाने क्या ऊपर से धाड़ करके नीचे गिर पड़ा, और जितना ऊपर जाता है और जितना ऊपर से नीचे गिरता है उतना उसको हानि होती है कि नहीं। ये श्रुता इस प्रकार की विद्वत्ता, जो विद्वान व्यक्ति सोचता है कि बस मैं भगवान को अपनी मुट्ठी में बांध लिया, सारे शास्त्र जानता हूँ, सब जानता हूँ, मेरे बराबर को कोई नहीं। तो विद्वत्ता से उत्पन्न जो अहंकार से अहंकार है उस अहंकार में वो व्यक्ति ज़्यादा अपराध कर बैठता है, धन से उत्पन्न हुआ अहंकार से इतना अपराध नहीं कर बैठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि लोग मुझे वाह वाह कर रहे क्योंकि मेरे पास धन है, उसको मालूम है मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी धन है ना, धन उसको अंधा बना देता है। वैसे जन्म भी, और जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर सुंदरता, सुंदरता भी इसी उत्पन्न हुआ अहंकार है। जैसे इंद्र को भी अहंकार था, उनका पोष था, पोष से उत्पन्न हुआ अहंकार है, लेकिन जल्दी सुधर गया, लेकिन तृणावर्त को मरना ही पड़ा। तो ऐसे ऐसे अनेकों चीज़ें चर्चा किया जा सकता है, लेकिन बात है कि सबसे पहला अयोग्यता क्या है, अहंकार। दूसरा श्लोक में नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः, कल इसके ऊपर हमने चर्चा किया कि आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कृष्ण जो हैं भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि क्योंकि इतना प्रेम करते, जैसे एक अमीर व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति, ये लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है, कैसे प्रेम करता है, उसको सुरक्षित रखता है। जितना धन से प्रेम करता है एक व्यक्ति, उसी प्रकार भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। भक्त जो हैं भगवान के धन हैं, इसलिए उनको कहा गया है नमः अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों को अपना वित्त, अपना धन मान के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अकिंचन जो है निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त हो चुके हैं, गुणवृत्तियों से निवृत्त हो चुके हैं। ये गुणवृत्ति मतलब क्या है? गुणवृत्ति का मतलब है कि इस संसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति जो है, सात्विक हो, राजसिक हो, तमसिक हो, तो ये गुणों की वृत्ति से जो मुक्त हो चुके हैं और ये संसारिक काम क्रोध लोभ से मुक्त हो चुके हैं, वैसे लोग भगवान के लिए प्रिय हैं और उनको अपना धन मान के बैठते हैं। तो इतना हद तक कि भगवान को आत्माराम कहा गया है। आत्माराम मतलब उनको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, अपने आप में आनंद लेते हैं। लेकिन इतना आत्माराम होने पर भी भक्तों के ऊपर ऐसा निर्भर करते हैं जैसे एक लोभी व्यक्ति धन के ऊपर निर्भर करता है। आत्माराम होने पर भी ये कृष्ण का स्वभाव है। तो ये कृष्ण का स्वभाव दूसरा कारण है कि अभक्त लोग जान नहीं पाते। कृष्ण का निजी स्वभाव ऐसा है कि कोई अभक्त उनको जान नहीं सकता। दूसरा, भक्त लोगों को कैसे देखभाल करते कृष्ण? शांताय, मतलब भक्त कुछ गड़बड़ भी कर देता है, गलत भी कर देता है, मतलब भी शांत रहते हैं वो, उनका ज़्यादा जैसे बच्चे कुछ गलत करते हैं, माँ ये थोड़ी ना बोलती है कि माता पिता थोड़ी ना बोलते, कभी बोल भी देते ठीक है चले जाओ घर से, लेकिन फिर भी उनका मूड ये नहीं रहता तुम जल्दी चले जाओ घर से, वापस उसको कैसे भी करके प्रेम से रखना, उस प्रकार की भाव रहता है। कैवल्य पतये नमः, कैवल्य पतये नमः का अर्थ क्या है? जो भक्त कैवल्य की ओर जाना चाहते, इधर कैवल्य का अर्थ है भक्ति। मान लो कोई कमी भी पड़ जाता है उसमें, जैसे एक पति पत्नी को देखभाल करते हैं वैसे भगवान भक्तों को देखभाल करते हैं। भक्तों के प्रति उनका विशेष लगाव है, संपत्ति है, भक्तों को अपना संपत्ति मानते हैं। इसलिए जो अभक्त होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको भगवान को जानना, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कल ये श्लोक में 28वें श्लोक में, यानी इसके अगले वाला तीसरा श्लोक जो है इस श्रृंखला में, चार श्लोकों की श्रृंखला, जहाँ किस प्रकार भगवान अभक्तों को अप्राप्य नहीं है या अप्राप्य नहीं है, उसको जान नहीं सकते, उसको वर्णन करने वाले चार श्लोकों में, मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादिनदम विधुम समम सर्वम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मितक कलिही। तो भूतानाम यन्मितक कलिही, तो कुंतीवाणी कहते हैं मन्ये त्वाम कालमीशानम, कुंतीवाणी कहते हैं मैं आपको काल के रूप में स्वीकार करती हूँ। और काल का स्वभाव क्या है? कालमीशानम वो कंट्रोलर हैं, सबसे पहला काल। दूसरा क्या है? अनादि है, उसका आदि नहीं है। और तीसरा क्या है? निधनम ना निधनम, उसका कोई अंत नहीं है। विभु है मतलब सर्वशक्तिशाली है। और समम चरंतम सर्वत्र, काल शक्ति जो है सबको समान दृष्टिकोण से देखता है। वो ये नहीं देखता है कि अमीर है थोड़ा उसका मृत्यु बाद में आ जाए, ये गरीब है इसको जल्दी मार दूंगा, नहीं नहीं नहीं, समम चरंतम सर्वत्र, प्रकृति के जो गुण हैं वो सबके साथ समान व्यवहार करता है। काल जो है सबके साथ समान व्यवहार करता है। वो ये नहीं देखता अच्छा ये तो बड़ा लिखा है, इसको मारने से देश को नुकसान होगा, हाँ इसको थोड़ा सा बचा के रखेंगे, उसका मृत्यु का अवधि थोड़ा बढ़ा देंगे, नहीं नहीं नहीं, भगवान की जो काल शक्ति है ये भगवान की दिव्य शक्ति है। लेकिन दिव्य शक्ति होने पर भी द टाइम पोटेंसी ऑफ कृष्णा इज अनकॉन्शियस पोटेंसी ऑफ कृष्णा, इट इज़ द ओनली पोटेंसी। भगवान का जो काल शक्ति ही एकमात्र शक्ति है जो दिव्य है और साथ साथ में अचेत है, इट इज अनकॉन्शियस। विशेषता है काल शक्ति का, स्पेशलिटी ये है काल शक्ति का, भगवान की शक्ति है काल। और ये काल शक्ति क्या है? वो दिव्य है, ये जगत से परे है, परे होने पर भी इट इज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है। इसलिए आप काल शक्ति के पास जाके आप प्रार्थना करो सुनने वाला नहीं है। अगर कोई कॉन्शियस व्यक्ति है, कोई सचेत व्यक्ति है, वही आपकी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन आप दीवाल के उस पास जाके आप प्रार्थना करोगे हे दीवाल मुझे बचाओ, तो थोड़ी ना सुनेगा वो। टाइम इज अनकॉन्शियस, आप कितना भी काल को प्रार्थना करो कुछ सुनने वाला नहीं है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, है कि नहीं? अनादिन समम चरंतम सर्वत्र, सबको समान देखती है काल शक्ति। लेकिन भूतानाम यन्मितक कलिही, भूतानाम मितक कली, भूतानाम, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? साधारण लोग जो भक्त नहीं है वो लोग सोचते हैं मितहा कलिही, आप जो है पक्षपात करते हो, हाँ आपके यहाँ पक्षपात करने की प्रवृत्ति है। तो ये पक्षपात लोग सोचते हैं, ये जो है भूतानाम यन्मितक कलिही, हाँ
लोग सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे विरोधात्मक विचार है, जैसे आप क्या करते हो, सुख देते हो और दुख भी देते हो, और एक तरीके से देखा जाए आप बहुत दयालु हो और साथ साथ में कोई दया नहीं आपके अंदर, और कोई सोचते हैं कि आप सबके साथ समान भी रहते हो लेकिन फिर भी पक्षपात करते हो। ये जो हैं आपके अंदर विरोधात्मक गुण हैं, तो ये कुंती महारानी कहती है आपके अंदर विरोधात्मक गुण है करके लोग समझते हैं कि आप एक तरीके से नहीं रहते हो, तो इसलिए भूतानाम यानी मृतक खली ही। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं अगले श्लोक में, न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य ऋणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्चास्मिन् विषमामतिर्निणाम्। विषमामतिर्निणाम्, लोगों ये जो आपके अंदर विरोधास्पद बातें हैं ये इसको देख के मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की मति में समस्या है, आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, समस्या है कि लोगों की दृष्टिकोण में समस्या है। तो न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम्, कोई व्यक्ति आपके चिकीर्षितम् आपके कार्य को समझ नहीं सकता है। तवेहमानस्य ऋणां विडम्बनम्, आपके जो यह मानस्य का अर्थ है जो आपके जो मन को नहीं समझता यानी अभक्त है, वैसे लोग क्या करते हैं, यह मानस्य द वर्ल्डली मैन आपके आपके मन को आपकी जो तत्व को नहीं जानते हैं, यह मानस्य ऋणां विडम्बनम वो सब विडम्बनम का अर्थ है मिसलीडिंग, प्रॉपर लिखते मिसलीडिंग, वो सब विचलित हो जाते हैं। नयस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित्, उनको मालूम नहीं है कि आपके लिए ना कोई प्रिय है ना कोई द्वेष है किसी के प्रति। न यस्य कश्चित् दयित मतलब प्रिय, न कर्हिचित् द्वेषस्य, ना किसी से आप द्वेष करते हो। यस्मिन् विषमामतिर्निणाम्, लेकिन आपका जो स्वभाव है लोगों को लगता है कि विषमाम, लेकिन आप एक ही हो, आपके व्यवहार एक ही जैसा रहता है लेकिन लोग सोचते हैं आप अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार व्यवहार करते हो। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि मूढ़ हो चुका है। जैसे उदाहरण दिया गया है सूर्य जो है वो क्या करता है, सूर्य का स्वभाव है कि एक सनस्टोन जैसे कोई मणि होता है, वो मणि सूर्य का प्रभाव से प्रज्वलित हो जाता है, यानी सूर्य अपना ही स्वभाव उस मणि को दे देता है। दूसरा अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य उदय हो या उदय ना हो, है कि नहीं, सूर्य का कोई प्रभाव अंधे पर नहीं रहता है। और तीसरा कि जैसे चातक पक्षी है सूर्योदय होते हुए तुरंत उनका प्रफुल्लित हो जाता है, और चोर लोग होते हैं वो सूर्य होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे कोई उल्लू है वो रात को देखता है, दिन के समय देख नहीं सकता, रात को बहुत घूमता रहता है, सूर्य होता है एकदम शांत जाके बैठ जाता है कि नहीं। तो सूर्य जो है चातक पक्षी को वो प्रफुल्लित कर रहा है, वही उल्लू को दुखी कर रहा है, और सूर्य जो है चोरों को दुखी कर रहा है और अंधे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और वही सूर्य जो है जो मणि है उनको अपना ही स्वभाव प्रदान कर रहा है। देखिए सूर्य के मन में ऐसा कुछ है विचार, देखो ये अंधा है ना इसके ऊपर मैं कुछ देखूंगा नहीं, ये चोर है ना इसको पकड़वाऊंगा, सूर्य ऐसा सोचता है नहीं, सूर्य अपना काम कर रहा है कि नहीं, सूर्य में कोई फर्क नहीं है, सूर्य का उदय होता है वही प्रज्वलित वही रोशनी अंधे को भी देता है और जिसका आंख है वही उसको भी देता है, वो सूर्य चोरों को भी उतना ही प्रभाव से अपनी रोशनी प्रदान कर रहा है। लेकिन अपने लोग अलग अलग प्रकार की लोगों की वजह से लोग सोचते हैं भगवान भी अलग अलग प्रकार के हैं, या उनमें भी कुछ मितक खली मतलब उनके अंदर मिथ्या, कभी वो एक तरीके से रहते हैं कभी एक तरीके से रहते हैं, नहीं एकम सत्य प्रभुदा वदंती, सत्य एक ही हैं लेकिन अलग अलग प्रकार की दृष्टिकोण की वजह से लोग सोचते हैं भगवान भी अलग अलग है, अनेकों भगवान हैं, ये गलत बात है। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि नयस्य कश्चित् दयितोस्ति कश्चित् द्वेषस्य यस्मिन् विषमा मतिर्निनाम। विषमा मतिर्निनाम मतलब क्या है, पीपल थिंक जस्ट यू आर पार्शियल। उनके गुणों के अनुसार, जैसे कोई लाल चश्मा पहना है तो एक सफ़ेद वस्तु को लाल रूप में देखता है, कोई हरा चश्मा पहना है उसको हरा रूप में देखता है, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि असत में वो वस्तु सफ़ेद है। वैसे भगवान एक है, लेकिन अलग अलग लोग अपने अपने दृष्टिकोण से अनुभव करके कहते हैं कि नहीं अलग अलग है। इसलिए लोग आपकी तत्व को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अपने अपने स्वभाव के द्वारा, अपने अपने गुणों के द्वारा ढके हुए हैं। अब ये चार श्लोकों का हमने कल चर्चा किया, जिसमें कुंती महारानी कहती हैं भगवान को जानने की अयोग्यताएं। पहला श्लोक में उन्होंने कहा कि अहंकार, दूसरा श्लोक में कहा कि भक्ति नहीं होने की वजह से लोग आपको नहीं जान पाते हैं, तीसरा श्लोक में उन्होंने कहा कि कालमीशानां मन्येत्वां कालमीशानां अनादिनिदं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां मितक्कलिः, लोगों के भूतानां मितक्कलिः। ये तीसरा श्लोक में समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम मितक्कली, तीसरा और चौथा श्लोक का सब्जेक्ट एक ही है। लोगों की अपनी अपनी धारणाओं की वजह से लोग सोचते हैं कि भगवान अलग अलग है, यानी अपना जो प्रकृति के द्वारा बंधे होने की वजह से लोग उनको जानते नहीं है। अभी हमने कुंती महारानी का जो प्रार्थना में से सबसे पहला तीन श्लोकों में तत्व निरूपण हुआ है, बाद के दो श्लोकों में गुणों का वर्णन हुआ है, बाद में तीन श्लोकों में भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ है, और बाद के जो चार श्लोकों में कौन भगवान को नहीं जान सकता है, भगवान को नहीं जानने का कारणों का वर्णन हुआ है। अभी भगवान को नहीं जानने का कारण वर्णन होने के बाद, अभी इधर दो श्लोकों में तीसवां और इकतीसवां श्लोक में कुंती महारानी भगवान की तत्व की निरूपण कर रही है। शी इज डिस्क्राइबिंग द रियल नेचर ऑफ कृष्णा, क्या है भगवान का तत्व क्या है। जैसे आप सब भगवद्गीता में जानते हो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुना। तो भगवान का तत्व ये है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यन्निशिष्यादुषु तद् अत्यंत विडम्बनम्। तो कुंती महारानी कहती हैं जन्म कर्म च विश्वात्मन, आप विश्व की आत्मा हो, विश्वात्मन करते विश्व की आत्मा हो। जैसे शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार विश्व में अनेकों अनेकों परिवर्तन होते हैं, लेकिन विश्व की आत्मा होने की वजह से भगवान कभी परिवर्तनशील नहीं है, ही इज द सेम, वो समान है। लेकिन भगवान का स्वभाव है, वो सबके प्रति समान होने पर भी, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी क्या करते हो, अजन्मा होने पर जन्म लेते हैं, अकर्तृ होने पर भी कर्म करते हैं। इसलिए जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या अकर्तुर, अजस्या अकर्तुर, अजस्या कर्त क्या है, अजन्मा होने पर भी जन्म लेते हो, अकर्तुर होने पर भी क्या करते हो, कर्म करते हो या लीला करते हैं। ये जो है अत्यंत विडंबनम, अत्यंत विडंबनम का अर्थ क्या है, अति विडंबन है, अति मोहित करने वाला है। कुंती महारानी निरूपण कर रही है, सही बात है, आपका ये सारे जितने भी कार्य है, जन्म कार्य, आपका स्वभाव है लोगों को कंफ्यूज करना। असत में शास्त्रों पढ़ने के बाद भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान कौन है वो जानने के लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कन्फ्यूज करना, इट इज इज नेचर टू कन्फ्यूज। लेकिन जो भक्त लोग, अभक्त लोग जो कन्फ्यूज होके वो विचलित हो जाते हैं, अनेकों अनेकों गलत सिद्धांत को अपना लेते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं ये भगवान के अलग अलग प्रकार के व्यवहार जो है, परस्पर विरोधात्मक स्वभाव को जो प्रकाशित करते हैं भगवान, उसमें आनंद लेते हैं। परस्पर विरोधात्मक बातों को समा जाते हैं वो भगवान है। यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है द लॉर्ड इज वन इन हुम म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज आर हार्मोनाइज्ड। भगवान वो हैं जिनके अंदर परस्पर विरोधास्पद बातें जिनके अंदर समा जाता है। समाने का अर्थ है भगवान दूर भी हैं और नज़दीक भी हैं, ये दोनों सही है। हाँ, भगवान शांत भी हैं और क्रोधित भी हैं, ये दोनों सही है। हाँ, भगवान आत्माराम हैं और भूख भी लगता है उनको, ये भी दोनों सही है। भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता लेकिन फिर भी वो भक्त जो उसको हृदय में बांध के रख सकता है, ये भी दोनों सही है। तदत्यंत विडम्बनम, जैसे मन कल आपको इस बात के विषय में चर्चा किया था कि विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम, ये सूत्र को कोट किया था जो भक्तिनोद ठाकुर ने तत्व सूत्रों में रचना किया। भक्तिनोद ठाकुर इस बात को कहते हैं विरुद्ध सामान्यम, विरुद्ध का अर्थ विरोधात्मक जो भावना है, सामान्यम का अर्थ क्या है, जो दोनों विरुद्ध बातें एक ही समय रह सकता है। विरुद्ध सामान्यम तस्मिन न चित्रम, न चित्रम का अर्थ इट इज नो एस्टॉनिशमेंट, उसमें कोई विचित्रता नहीं है, स्वभाव है कृष्ण का। इस बात को कुंतीवाणी कह रही है, क्या कहती है, तदत्यंत विडम्बनम, क्योंकि भगवान आप आत्मनः, आप पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक स्तर में होने पर भी तिर्यक निशिशु यादुषु, अलग अलग योनियों को धारण करते हो, अलग अलग रूपों को धारण करते हो, जैसे कभी कभी जानवर के रूप में आते हो, कभी मछली के रूप में आते हो, कभी मनुष्य के रूप में आते हो। ये समझना अत्यंत विडम्बन है। और ये क्यों करते हो आप, उस श्लोक को ये आज के श्लोक से हम शुरू करेंगे, 31st श्लोक। वो कुंती वाणी कहती है आपका एक ही काम है, ये विडम्बन जो है, इस प्रकार का आप विरोधात्मक बातों को क्यों प्रकाशित करते हो, इसलिए प्रकाशित करते हो ताकि भक्त आपका आनंद ले और आप भक्तों के साथ आनंद ले। क्योंकि विरोधात्मक बातें नहीं होता है कि आनंद नहीं होता है। इस जगत में भी हम देखते हैं कि मान लो जी एक परिवार है, एक पति पत्नी है, अगर सब शांति से चल रहा है तो मज़ा नहीं आता है है कि नहीं, क्रोध भी होना चाहिए प्रेम भी होना चाहिए है कि नहीं। अगर गुस्सा होता नहीं है तो प्रेम का प्राकट्य नहीं होता है। बीच में कभी होना चाहिए कि बस मैं घर से चली जाऊंगी, तब थोड़ा प्रेम बढ़ता है, नहीं तो ऐसे बैठे हैं तो शांति से बैठे कुछ मज़ा नहीं आता है कि नहीं। जब ये एकदम थर्ड क्लास, ये जो भौतिक जगत का ये जो संबंधों में इस प्रकार का चीज़ है तो आध्यात्मिकता में तो होना ही चाहिए है कि नहीं। वैरायटी इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ, वो भी वैरायटी कैसे होना चाहिए, परस्पर विरोधात्मक बातें। तो इस बात को इधर कुंती महारानी दामोदर लीला का स्मरण कर रही है, स्मरण करते हुए कहती हैं हे भगवान, मैंने एक बार वृंदावन आई थी, गोकुल आई थी, गोकुल में लीला मैं देखी थी, उसको लीला को वर्णन कर रही है। वो कहती हैं गोप्यादे कृतागसी दावतावत, गोप्या दूप्यादे त्वयि कृतागसी दामतावत, या ते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य समाम विमोह्यति भिर्यप यद्विभेति, भिर्यप यद्विभेति। सबसे पहला कहती हैं गोपी आददे, यशोदा का नाम सीधा नहीं ले रही है, गोपी शब्द के द्वारा वो संबोधित कर रही है यशोदा को, क्योंकि अगर कोई विशेष तरीके से नाम लिया जाए तो हो सकता है कि इसके बराबर कोई और हो है कि नहीं। यशोदा की महिमा को गुणगान करते हुए कुंती महारानी कहती है गोपी। हाँ, ऐसे बहुत सारे पुरुष है लेकिन एक को पुरुष करके संबोधित किया जाए, इसके द्वारा उनकी विशेषता को प्रकट किया जाएगा। अगर उनको नाम लेके संबोधित करेंगे तो नहीं, ये भी और एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति बहुत सारे लोग हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए एक गोपी शब्द इस्तेमाल करती हैं कुंती महारानी, वो जो गोपी है ना मतलब क्या है, बाकी सब है लेकिन वो जो है वो गोपी स्पेशल है, कौन है, यशोदा। इसलिए गोपी शब्द के द्वारा सूचित कर रही है, वो गोपी मतलब वो विशेष गोपी कौन है, वो यशोदा। आददे, उन्होंने उनको, उन्होंने लिया हाथ में पकड़ा, त्वयी कृतागसी, क्यों, क्योंकि पकड़ लिया गोपी ने, क्यों पकड़ा, कृतागसी आपने बहुत गड़बड़ किया। कृतागसी, इसमें कृता आघा ये शब्द आता है, देखे कृता प्लस आघसी अघासी, अघा आप सुना, अघासुर जो दुष्ट है। यानी कुंती महारानी कह रही है तुमने दुष्ट कार्य किया ना, अब देखो दुष्टता दिखाया नहीं, भगवान संबोधित कर रही है, नमः सब बहुत सारा बताया है, अभी तुमने दुष्ट कार्य किया था गोकुल में। कृतागसी दामतावत याते दशाश्रुत कलिनांजन संभ्रमाक्षम, तुम्हारे दाम यानी तुम्हारा जो एक रस्सी लेके आई थी तुमको पकड़ के बांधने के लिए, तब क्या हुआ ये चीज को देख के क्या हुआ, दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। ये लीला तो आपको मालूम है, जो दामोदराष्टकम के समय में हम इस लीला को स्मरण करते हैं, कार्तिक में पूरा सुबह शाम दामोदराष्टकम गाते हैं, उसके अंदर सत्यवर्ति मुनि जैसे वर्णन करते हैं कि याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, वैसे उस लीला में भागवतम में जो वर्णन है दामोदर लीला और दामोदराष्टकम में जो वर्णन है लीला दा थोड़ा सा अंतर है। दामोदराष्टकम में सत्यवर्त मुनि कहते हैं कि भगवान ने दोनों हाथों से दोनों आंखों को दोनों हाथों से मलना शुरू किया, लेकिन उधर ऐसा है कि एक ही हाथ से, क्योंकि एक हाथ थोड़ा सा ऐसा था तो आप पिक्चर देख सकते हो। तो इधर याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, संभ्रमाक्षम उनकी आंखों में पूरा पानी भर गया था और आंखों का जो काजल है पूरा चेहरे पे लग गया था। वक्त्रम निनीय, वक्त्रम निनीय, वक्त्रम मतलब उनके चेहरा, निनीय मतलब झुके झुके हुए थे। वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, कृष्ण भयभीत होते हुए, श्रीदास भयभीत होते हुए टेढ़म टेढ़ा खड़े, आपको पूरा चित्र मालूम है। भय भावनया स्थितस्य समाम विमोहयति, ये मुझे मोहित करता है। कुंती महारानी कहती हैं हे कृष्ण बड़ा ये जो दृश्य मुझे बड़ा मोहित कर रहा है, क्यों मोहित कर रहा है, क्योंकि भय समाम विमोहयति भीर्यप्यधिभेति, भय स्वयं जिनसे भयभीत हो जाता है वो अभी भयभीत है यशोदा से, अभी ऐसा कैसे समझे इसको, ये आपका स्वभाव है। ये स्वभाव क्यों है, क्योंकि जिसके द्वारा ये स्वभाव के द्वारा ही आप भक्तों को मोहित करते हो, और जब तक भक्तों को मोहित नहीं किया जाता है तो लीला संपन्न नहीं होता, लीला संपन्न नहीं होता है तो आनंद नहीं होता है। तो यही आपका तत्व है, आपका स्वभाव ही मोहित करना, अभक्तों को भी मोहित करते हो और भक्तों को मोहित करते हो। जब अभक्त मोहित हो जाते हैं आपका तत्व को जान नहीं पाते, जब भक्त मोहित होते हैं तो आपका जो तत्व है क्या है, वो भक्तों का आनंद प्रदान करना उसको अनुभव कर लेते हैं। दैट इज योर नेचर टू बिविल्डर एवरीवन। जैसे कल हमने ये दामोदर लीला के अंतर्गत बहुत सारे परस्पर विरोधाभासमक चीजों को चर्चा किया, कैसे सबसे पहला भगवान जब उठे उनका उठना था रोज यशोदा में आके उठाती थी, जब उठाती थी कम से कम आधा घंटा नखरा चलता था, यशोदा में उठाती थी फिर उठते वापस हो जाते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ उठाने के लिए आई नहीं। अभी कृष्ण सोच रहे कब उठाने के लिए आई, एक आंख खोल के देख रहा है कि नहीं अभी क्यों नहीं आई, उठाने का टाइम हुआ उठे हुए क्यों नहीं आई, ऑलरेडी गुस्सा शुरू हो गया। हाँ ये कितना कितना आकांक्षा कि माँ उठाए थोड़ा नखरा करूँ, वो भी नहीं हुआ तो उनको बहुत गुस्सा है, तब से गुस्सा है, उठने से गुस्सा है, उठ के थोड़ा ऐसा नींद में चेहरा है, बाल बिखरे हुए है, ऐसा चलते चलते आए देखा कि यशोदा मक्खन मंथ रही है, दही मंथ रही है, तो आके कृष्ण ने यशोदा माई को पकड़ा, यशोदा माई ने कृष्ण को देखा बाल बिखरे हुए है और एकदम नींद की आंख है, और उनको पता लगा भी अरे बच्चे भूख लग रही होगी, तो तुरंत यशोदा माई ने भूख पिलाया। तो उस समय कृष्ण पेट पकड़ा था, एक आचार्य पेट पकड़ा था, बहुत भूख लगी है तभी जो आत्मा राम है उनको भूख लगता है। तो इसलिए ये जो लीलाएं हैं भगवान की, इसको भौतिकवादी कभी समझ नहीं सकते, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, इतना हद तक कि जो उपनिषद के ज्ञाता हैं वो भी इन लीलाओं को नहीं समझ सकते, बाकी अन्य लोग हैं अन्य भौतिकवादी हैं उनकी क्या कहना। इसलिए मायावादी लोग और अनेकों अनेकों ज्ञानी लोग योगी लोग भगवान की तत्व को नहीं जान सकते, दे कैन नॉट, दे कैन नॉट। इसलिए ब्रह्म संहिता में अनेकों अनेकों शास्त्रों में कहा गया है भगवान वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, बाकी सब चीज़ की क्या कहना, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की तत्व को नहीं समझ पाए, वेदों का सबसे पहला ज्ञाता वो ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी स्वयं वो भगवान को नहीं समझ पाए। जब कृष्ण लीला कर रहे थे कृष्ण बीच में बैठे और सब ग्वाल बाल आजू बाजू में बैठे और वो झूठा कह रहे हैं, कृष्ण ग्वाल बालों की झूठा कह रही है, देख के ब्रह्मा जी हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान जो है हविष यज्ञ में हविष खाते हैं, यानी जो शुद्ध भोजन है घी से बना हुआ है, चावल घी से बना हुआ अच्छा सा भोजन है वो यज्ञ में अर्पण होता है, शुद्ध चीजें अर्पण होता है। अब इधर क्या कर रहे, ये थोड़ी ना भगवान हो सकते हैं। इसलिए द बिविल्डरिंग नेचर ऑफ कृष्णा, कृष्णा बिविल्डर्स एवरी वन, कृष्णा बिविल्डर्स डिवोटीज ऑल्सो। इस प्रकार कुंती महारानी इन विरोधास्पद बातों को चर्चा कर रही है। और यशोदा को देख के डर के मारे भाग रहे, और यशोदा ने पकड़ लिया, भक्त्यैव बद्धम्, केवल भक्ति के द्वारा भी भगवान बंधे जाते हैं। इस बात को सारे जगत को आख्यात मतलब सारा जगत को घोषणा करना चाहते हैं, देखो भक्त ही मुझे बांध सकता है। और बांधने के बाद कृष्ण क्या कर रहे हैं, अभी डरे हुए यशोदा से, और मैं रो रहा हूँ, आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। ये सारे जो लीलाएं कुंती महारानी वर्णन कर रही हैं, करके कहती है, हे भगवान, मोहित करना आपका स्वभाव है सार रूप में। जो लोग भक्त अभक्त लोग मोहित हो जाते हैं, अहंकार के वजह से मोहित हो जाते हैं, दूसरा आपके भौतिक गुणों के वजह से लुप्त होने की वजह से मोहित हो जाते हैं, तो आपके प्रति दुर्भावना होने की वजह से आप पक्षपात करते हो, उस प्रकार उसकी वजह से मोहित हो जाते हैं। लेकिन अभक्त लोग, भक्त लोग भी मोहित हो जाते हैं, लेकिन किसके वजह से मोहित हो जाते हैं, आपका जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है, माधुर्यमय स्वरूप है, जो वास्तविक तत्व है, लोग भक्तों को आनंद करने का जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव की वजह से मोहित हो जाते हैं। तो मोहित होना आपका स्वभाव है, मोहित करना आपका स्वभाव है। टू बिविल्डर पीपल इज योर नेचर, सो बट लेट अस टेक पार्ट। हम भक्त होके भगवान का ये जो मोहित करने का स्वभाव है उसके अंदर डूब जाए, नहीं तो भक्त होके लोग मोहित होते हैं और दुखों को अनुभव करते हैं। ये सब्जेक्ट होने के बाद अभी चार श्लोकों को उच्चारण किया गया है। भगवान की प्राकृतिक प्रकट क्यों होते हैं या अवतार क्यों लेते हैं, ये चार श्लोक है। यानी ऐसे श्लोकों की श्रृंखला में जाए तो भागवतम के अनुसार आठवां अध्याय का पहला स्कंद का 32, 33, 34 और 35, ये जो चार श्लोक है दिस टॉक अबाउट, ये बताया जाएगा कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, वाई ही इनकार्नेट्स। क्योंकि पहले कि कुछ श्लोकों में आप जानते हैं, हमने अभी चर्चा भी किया था, तिर्यन यादुषु निशिषु, खास करके ऋषिषु, खास करके भगवान की जो लीला अवतार हैं वो क्यों लेते हैं, उसका वर्णन कुंती महारानी कर रही हैं। अलग अलग लोगों की मत को वर्णन कर रही हैं। सबसे पहला मत कहती है, केचिदाहु रजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चंदनम। तो एक सुंदर उदाहरण दे रही है, मलयस्येव चंदनम, मलय पर्वत में चंदन प्राप्त होता है। वैसे अभी तो आपको चंदन प्राप्त नहीं होगा, उधर सब मलेशिया आप जाएंगे अभी आपको रबर के वृक्ष प्राप्त होंगे। पहले मलेशिया, मलय पर्वत मतलब मलेशिया, अभी का जो मलेशिया है, कृष्ण के समय में ऐसा था कि उधर केवल चंदन के वृक्ष थे, और वो चंदन के वृक्ष जो हैं उधर से जो शीतल हवा बहते वृंदावन तक पहुंचती थी, और वृंदावन के लीलाओं को पूरा सुगंधित कर देती थी रास में। और जगन्नाथपुरी में चंदन जो है मलेशिया से आया करता था, लेकिन अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, सब चंदन को तोड़ के वृक्षों को तोड़ दिया, और बोला कि चंदन से क्या फ़ायदा, क्योंकि आप चंदन वृक्ष जगह पर आप रबर के ट्री उगाओ, कम से कम वो रबर से मिलेगा, रबर को आप क्या टायर में लगा सकते हो तो आपका वाहन चल सकते हैं। तो ये ऐसा पूरा देश को बर्बाद कर दिया। तो मलयस्य इव चंदनम, देखिए भागवतम में मलेशिया का बात आया है, मलयस्य इव चंदनम, एक चंदन का वृक्ष कहीं रहे तो अनेकों अनेकों नीम वृक्ष भी हो, लेकिन वो नीम वृक्ष का भी वो जो कड़वापन है उसको नाश कर देता है, इतना शक्तिशाली होता है चंदन का वृक्ष। तो भगवान का ये स्वभाव है कि चाहे कितना भी कहीं भी भगवान जाए, भगवान चंदन जैसे हैं, कहीं भी कोई भी तथाकथित अपवित्र चीज को भी पवित्र बना देते हैं। अस्तित्व में देखा जाए यदो, इधर इस श्लोक में यदु का वर्णन किया गया, यदु वंश का वर्णन किया गया है। यदु के विषय में भागवतम के 10वें स्कंद के पहले शुरुआत में ही यदु का वर्णन हुआ है। यदो हो, यदु मतलब यदुकुल में जन्म लिए भगवान, यदुकुल में भगवान जन्म लिए, क्यों लिए? क्योंकि यदुओं को आनंद देने के लिए, यदुओं का यश फैलाने के लिए। तब कोई कहे, अरे ऐसा कैसे, हाँ यदु तो अपने पिताजी का आज्ञा नहीं माना था, अपने पिताजी का आज्ञा नहीं माना था। आपको मालूम है ययाति ने कहा था मेरा बूढ़ावस्था को ले लो और तुम्हारा युवावस्था मुझे दे, यदु ने कहा मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भक्ति करना है। तो इस चीज़ को देख के भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मेरी भक्ति के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पिता का आज्ञा को तिरस्कार किया। सत्य में पिता का आज्ञा को तिरस्कार करना ये गलत बात माना जाता है, ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से दोष, इसको दोष माना जाता है। लेकिन भगवान ने क्या किया, ठीक है मैं प्रकट होके उस दोष को छुपा दूंगा, मैं प्रकट होके उस दोष को छुपा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ये दोष को स्वीकार किया। तो मेरे लिए जब ये यदु ने दोष स्वीकार किया, पितृ पिता का आज्ञा को नहीं मानने का दोष को स्वीकार किया, तो मैं उस दोष को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके परिवार में प्रकट हो जाऊँगा। इससे केचिद आहुर अजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्ते यदोह प्रियस्यान्वावये, यदोह प्रियस्यान्वावये, प्रियस्या प्रियस्या यदो यदु से बहुत प्रेम की वजह से। क्यों प्रेम किया? क्योंकि यदु ने भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने जो धर्म को त्याग किया, सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम व्रजा, वैसे भक्तों को भगवान कुछ भी करने, उसे इतना प्रेम करते हो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा क्या है, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यानी पुण्य श्लोक, पुण्य श्लोक का जरूरत है उनके भक्त जैसे युधिष्ठिर इत्यादि, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। तो भगवान से बड़ा कीर्तिमान कोई है नहीं, उससे बड़ा प्रसिद्ध कोई है नहीं। तो जहाँ भगवान जाते हैं, जहाँ उपस्थित हो जाते हैं, वो उपस्थित हुआ जगह भी कीर्ति को प्राप्त करता है, और जहाँ भगवान जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो परिवार भी कीर्तिमान हो जाता है। अब देखिए भगवान का स्वभाव है क्या है, मैं अपने भक्तों को ख्याति प्रदान करूँगा। जैसे अभी सब लोग वृंदावन व्रज क्यों जाते हैं, भगवान प्रकट हुए, अभी सब कुरुक्षेत्र क्यों आते, इधर भगवान ने अर्जुन को भगवद्गीता सुनाया, तो भगवान की वजह से या उसके संबंधित लोगों को भी कीर्ति प्राप्त होती है। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु संवाद में रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय सबसे ज़्यादा कीर्तिमान व्यक्ति कौन है जगत में, हु इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन। तो हमने कहा, रामानंद राय ने कहा है भक्त जो है सबसे कीर्तिमान है, ही इज़ द मोस्ट फेमस। क्यों? क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई कीर्तिमान तो है नहीं, जो भगवान से जुड़ जाता है उनको भी कीर्ति प्राप्त हो जाता है। अभी इतना हद तक इंद्र जैसा व्यक्ति, इंद्र ने इतना दुष्ट कार्य किया सबको मालूम है, भगवान को उन्होंने उनके भक्तों को मारने का प्रयास किया, व्रज में तहलका मचाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने वैसे इंद्र के ऊपर भी कृपा किया। जब तक कृष्ण की लीला चर्चा होगी तब तक इंद्र का भी चर्चा होगी, है कि नहीं? इंद्र भी फेमस, इंद्र ऑल्सो बिकेम फेमस। कृष्ण से जुड़ने मात्र से कृष्ण का स्वभाव अपने अंदर आ जाता है। तो ये इधर कहा गया केचिद आहुर अजम जातम, अजन्मा होने पर भी वो जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं, सो कारण क्या है, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक द ग्रेट पायस किंग्स जैसे युधिष्ठिर इत्यादि, इन लोगों की कीर्ति बढ़ाने के लिए। और भीष्म पितामह का कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या किया, सारे जगत को दिखाया मैं युधिष्ठिर को समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बस की बात नहीं है युधिष्ठिर को समझाना, केवल एक ही व्यक्ति जो समझा सकता है वो है भीष्म। जो भगवान अर्जुन को गीता समझाए वही गीता युधिष्ठिर को समझाने के लिए गए युद्ध के बाद, युद्ध के बाद युधिष्ठिर की जो अवस्था थी, युद्ध के पहले जो अर्जुन की अवस्था थी वही युधिष्ठिर की अवस्था युद्ध के बाद हो गई। युधिष्ठिर रोने लगे, मैंने क्या कर दिया, वो सब है भगवान, अभी ऐसा लगता है क्या जीना मरना अच्छा है, ऐसा उन्होंने करने लगा। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझाया लेकिन समझे नहीं युधिष्ठिर महाराज। उधर उस श्लोक में आते हैं अद्भुत कर्मण, हाँ आगे अगले अध्याय में आते हैं, नौवा और दसवा अध्याय में ये सब प्रसंग है। तो अद्भुत कर्मण, हाँ क्या अद्भुत कार्य कृष्ण का, बाहर से कृष्ण प्रवचन दे रहे भगवान के रूप में, वही कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय परमात्मा के रूप में बोल रहे, इसको समझो मत, डोंट अंडरस्टैंड। अद्भुत कर्मण क्यों, क्योंकि मैं तब मुझे भीष्म मेरा प्रिय भक्त है उसकी कीर्ति बढ़ानी है। अभी तक भीष्म पितामह का बात हम करते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, इसलिए प्रिय पुण्य श्लोकस्य कीर्ति, उनकी कीर्ति प्रदान करने के लिए। यदो हो प्रियस्यान मावये, कभी कभी यदु लोगों इतना हद तक कि भगवान किसी के परिवार में जन्म ले लेते हैं, जैसे यदु के परिवार में अभी तक कृष्ण का नाम है यादव, यदुवंश, वृष्टि वंश, प्रदीप, यदुकुलनंदन, यदु का नाम ऐसा ना, यदु को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, लेकिन यदु को महान करने के लिए, उनका प्रसिद्धि ख्याति बढ़ाने के लिए भगवान ने जन्म लिया। जैसे मलयस्य इव चंदनम, मलि मलय पर्वत में चंदन प्रकट होके हर वृक्ष को चंदन अपना गुण प्रदान करता है, वैसे भगवान यदुकुल में प्रकट होके यदु को और अन्य जितने भी राजा है उनको अपना ही कीर्ति प्रदान किया। जैसे देखा जाए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात अपने तात्पर्य में लिखते हैं, बोलते हैं कि नल महाराज वो भी बड़े पयस बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनकी ख्याति इतना नहीं है जितना यदु है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं था। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, दक्षिण भारत की बात है, तो आप बहुत सारे प्रवचन दे रहे हो, आप नल दमयंती के विषय में कुछ कहिए और सावित्री सत्यवान के विषय में कुछ कही है, वो भी महान थे। तब प्रभुपाद ने कहा, वी आर नथिंग टू डू विद देम। तो ये घबरा गया, तो उन्होंने पूछा, भाई बिकॉज दे आर नथिंग टू डू विद कृष्णा, क्योंकि उनको कृष्ण से कुछ देना देना नहीं है, तो इसलिए हमको भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रभुपाद, नल महाराज वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ग्रेट किंग बट ही हैज नो कनेक्शन विद लॉर्ड, देयरफॉर युधिष्ठिर महाराज इज मेंट हियर टू बी ग्लोरीफाइड। तो पुण्य श्लोकस्य कीर्ति, पुण्य श्लोक किसी को भी लागू नहीं होता बल्कि युधिष्ठिर महाराज को लागू होता है। आगे कुछ ऐसे लोग हैं, अन्य लोग कहते हैं, नहीं नहीं भगवान का प्राकट्य जो है ये दू तो बहुत पहले की बात है, भगवान प्रकट हुए वसुदेव के लिए, वसुदेव देवकी के लिए। इसलिए अगले श्लोक में कुंती महारण कहते हैं, अपरे वसुदेवस्य, अपरे मतलब कुछ और लोग, वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगा ततस्त्वं यस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। लोग कहते हैं कि आप प्रकट हुए हो, क्यों प्रकट हुए हो? अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो, किसी ने याचना किया था। अभी देखिए इधर देवकी और वसुदेव ने याचना किया था, भगवान आप पुत्र के रूप में प्रकट हो जाइए। सुतपा और पृष्णी, वसुदेव और देवकी पिछले जन्म में सुतपा और पृष्णी थे, ये दोनों ने बहुत योग मिश्र भक्ति किया था। वैसे नंद महाराज और यशोदा ये दोनों द्रोण और दारा था पिछले जन्म में, वो लोगों ने शुद्ध भक्ति किया था, इसलिए भगवान ने अपनी माधुर्यमय स्वरूप प्रकाशित किया यशोदा नंद महाराज के सामने। लेकिन ये जो देवकी और सुदेव सुतपा प्रश्नी, थोड़ा सा योग मिश्र था उनके अंदर, लेकिन फिर भी भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनको ने कहा कि ठीक है आपके पुत्र गृह में प्रकट होऊंगा। इसलिए उनके यशोदा देवकी के सामने वसुदेव और देवकी जब भगवान प्रकट हुए तुरंत उनको प्रणाम किए, उनको स्वाभाविक और केवल वात्सल्य नहीं था, गौरवयुक्त वात्सल्य था। क्यों? उन्होंने याचना जब किया था, भक्ति किया था, उस समय थोड़ा योग मिश्र था, सूखे पत्ते कहा कि अनेकों सालों तक बड़ी तपस्या की थी। जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, हमको पुत्र के रूप में आप चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो देवक्याम वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात, उन्होंने याचना किया था इसलिए प्रकट हुए। प्रकट होके अजस्त्वम अस्य क्षेमाय, अजन्मा अस्य, अजस्त्वम अजन्मा होने पर भी अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। और देवकी वसुदेव बहुत तकलीफ में थे, क्यों है? असुरों की वजह से। तो असुरों को मारने के लिए, यानी सुरद्विषाम, सुरद्विषाम करते हैं सुरों से या भक्तों से जो द्वेष करते हैं, कौन है? असुर लोग। वदाया, वदाया मतलब उनको ने आप आके मारे। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है? क्षेम आया, सारे लोगों की क्षेम आप चाहते हैं, खास करके भक्तों को रक्षा करने की हेतु तो जब आप आते हो उसके अंदर स्वाभाविक तरीके सारा जगत को अपने आप क्षेम, अपने आप अच्छा हो जाता है, उनको कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं सारे लोगों की कल्याण हो, वो अपने आप हो जाता है। भगवान आते हैं, भक्तों को रक्षा करते हैं, उसके द्वारा सारा जगत का अपने आप कल्याण हो जाता है, उसके कोई विशेषता नहीं है। तो दूसरे श्लोक में भगवान की प्राकृति के विषय में कहा गया है, अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात, देवकी और वसुदेव को की याचना की वजह से आप प्रकट हुए। तब ये भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि देवकी और वसुदेव पिछले जन्म में सुतपा प्रश्न थे, क्या देवकी और वसुदेव क्या नित्य सिद्ध नहीं है? भगवान के जो माता पिता नित्य सिद्ध होना चाहिए। तो ये भी है, देवकी और वसुदेव जो हैं भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। भगवान की धाम में जब भगवान प्रकट होते हैं उनके साथ देवकी वसुदेव प्रकट होते हैं, वो नित्य सिद्ध होने के वजह उनको पिछला जन्म कहाँ था, पिछला जन्म तो था ही नहीं। लेकिन ऐसा वर्णन किया गया है सुतपा और प्रश्नी अगले जन्म जब, यानी भगवान से प्रार्थना करके पुत्र के रूप में जब उनको वरदान मिला, अगले जन्म में क्या हुआ, जब भगवान प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के साथ, सुतपा और प्रश्नी देवकी और वसुदेव के शरीर में प्रवेश किए और भगवान के जो ये जो उनके जो पुत्र को प्राप्त करने के जो वात्सल्य हैं, उस वात्सल्य को जैसे वसुदेव और देवी की अनुभव करते हैं, सुतपा और प्रश्नी वसुदेव शरीर में प्रवेश करके वो उनको उसी प्रकार का भावना को अनुभव किया। जैसे हम लोग ये कहेंगे नंद महाराज यशोदा, उनके पिछले जन्म में द्रोण और दारा थे, ये बड़ा अपराध होता है। क्यों? क्योंकि नंद महाराज यशोदा कौन है? भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है, भगवान की धाम में, उनको पिछला जन्म था ही नहीं, वो कभी बंधन में नहीं आते क्योंकि पार्षद हैं। लेकिन इसको कैसे समझे, हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि द्रोण और दारा नंद महाराज यशोदा के शरीर में प्रवेश करके वो जो आनंद नंद महाराज यशोदा अनुभव कर रहे कृष्ण की वात्सल्य में, उस आनंद को द्रोण और दारा भी वो अनुभव कर रहे हैं। इस बात को हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। आगे दो श्लोक हुआ जहाँ भगवान की प्राकट्य के कारण का वर्णन किया, अभी और दो श्लोक है जिसके अंदर कुंतीवाणी कहती है भारावतारान्यन्ये भुवो नाव, भारावतारान्यन्ये भुवो नाव इवो ददो सीदंत्या भूरिबारेण जातो ही आत्मभुवार्तितः, सीदंत्या भूरिबारेण जातो ही भुवार्तितः, भुव आर्तितः, भुव मतलब ब्रह्मा जी, आत्मभुव आर्तितः, आत्मभुव मतलब ब्रह्मा जी, आत्मभुव मतलब स्वयंभू, जो स्वयंभू कौन है, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उधर से डायरेक्टली ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है, ये आत्मभू कहा जाता है। तो आत्मभू ब्रह्मा जी ने आर्तितः प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया, बड़ा प्रसिद्ध लीला आप सब जानते हैं, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी क्यों प्रार्थना किए थे, भगवान के दसवें स्कंद में लीला आती हैं किस प्रकार भुवा यानी भूमि देवी गाय का रूप धारण करती है, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने याचना किया, अपने दुख बताया, तो ब्रह्मा जी ने सोचा ठीक है ये जो भूमि देवी हैं वो कौन है, सर विष्णु की पत्नी है, अभी मैं तो सृष्टि करता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट वो नहीं है कि उनको रक्षा करना, रक्षा करना है मतलब असुरों को मारना, असुरों को मारने का डिपार्टमेंट किसका है, किसको मृत्यु करना मारना डिस्ट्रॉय करना का डिपार्टमेंट शिव जी का है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो शिव जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ में लेते हुए शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने कहा ठीक है मेरा डिपार्टमेंट तो डिस्ट्रॉय करना, असुरों को तो मैं मारूंगा, हाँ लेकिन बात यह है कि इधर रक्षा है, असुरों का नाश पृथ्वी की रक्षा के लिए, रक्षा मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। चलो हम जाते इंद्र के पास, क्योंकि इंद्र जो है भगवान के प्रतिनिधि है, वो राजा है देवताओं का, तो वो संभालेंगे, चलो उनके पास जाएंगे। तो इंद्र गया, इंद्र ने कहा ठीक है मैं रक्षा जरूर करूंगा, लेकिन ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, उचित नहीं है, मैं सारा प्रजा को रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन ये कौन है, पृथ्वी माँ है और भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी का धीमा ही, विष्णु की पत्नी है पृथ्वी, और किसी और की पत्नी को रक्षा करना ये शोभा नहीं देता, ये करना नहीं चाहिए, धर्म के विरुद्ध है, पत्नी का रक्षा करना केवल पति का ही कर्तव्य है, तो इसलिए हम सबको उधर जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो सब लोग इंद्र गए, तो सारे देवता लोग भी पहुँचे, सब लोग जा रहे हैं, जाके भागवत के दस्य संग इसका वर्णन है किस प्रकार, क्षीरम क्षीर पयोनिधे पुरुषम पुरुष सुप्ते न, क्षीर सागर के तट पे गए और सब लोग पुरुष सुक्त उच्चारण करने लगे, और जैसे पुरुष सुक्त उच्चारण करने लगे कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने कुछ बातों कहा, कुछ आदेश कहा, ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मैं प्रकट हो रहा हूँ, कुछ ही समय प्रकट हो रहा हूँ, मुझे मालूम है सब दुख क्या है, लेकिन आप सबको बताओ कि उनके देवताओं को अलग अलग यदुकुल में जाके प्रकट हो जाए, अलग अलग जगह प्रकट हो जाए, ताकि मैं आप जाके लीला करूँगा उसमें मेरे भाग ले सकते हैं। उनकी पत्नियों को भी कहना कि वो भी तत्प्रियार्थ थे मेरे प्रसन्नता के लिए, वो भी जाके व्रज में प्रकट हो जाए, इसलिए उनको देव गोपियाँ कहा जाता है, देवचरी गोपियाँ, देवताओं की पत्नियाँ गोपियों के रूप में प्रकट हुआ देवचरी गोपियाँ, ये पूरा लीला भागवत में वर्णन है। तो इसके विषय में कहते हैं ये जो नाव है, जब इसके ऊपर भार बढ़ जाता है नाव क्या होता है, डूब जाता है, ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया था, तो पृथ्वी के ऊपर कौन सा किसका भार बढ़ गया था, असुरों का भार बढ़ गया था। असुर जो हैं वो भी पृथ्वी माँ के पुत्र हैं, कितना भी पॉपुलेशन को पृथ्वी माँ के ऊपर कोई उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, माँ को कितने भी बच्चे हो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक अगर शैतान हो जाए ना तो भारी पड़ जाता है, ठीक है। हाँ, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अभी एक काफ़ी है, क्यों पहले 8-10 होते थे, एक डजन तो मिनिमम था कुछ समय पहले, लेकिन एक भी परेशान करते, एक से भी वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों शैतान हो रहे हैं सब लोग। तो पृथ्वी माँ जो है वो अनेकों अनेकों बच्चे भी हों, दुनिया में बड़ा पॉपुलेशन एक्सपेंशन प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, क्वांटिटी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ क्वालिटी प्रॉब्लम है, अच्छा क्वालिटी है। तो इतने सारे असुर की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए पृथ्वी माँ को भारी पड़ रहा था, वो एकदम जैसे नाव भार की वजह से डूब जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी नष्ट होने वाला था असुरों की संख्या की वजह से, इसलिए पृथ्वी माँ ने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास जाके याचना किया, भारावतारण्यान्य भुवना विबोधतो सीदंत्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः। अभी भले ही 3 श्लोकों में कुंती महारानी ने वर्णन किया भगवान क्यों प्रकट होते हैं, अलग अलग लोगों का मत वर्णन किया, अभी कुंती महारानी कहते हैं मेरा मत सुनिए, जो टॉप मोस्ट है, भले ही अनेकों कारण हैं कि पहले श्लोक में कहा गया है यदु का कीर्ति को वर्णन करने के लिए, दूसरा श्लोक में वासुदेव देवी ने याचना किया, तीसरा श्लोक में ब्रह्मा जी ने याचना किया, तो इनमें ऐसे याचना करके आप आए, लेकिन कुंती महारानी कहती है नहीं, हर 3 श्लोक में पिछले 3 श्लोकों में आपके प्राकट्य के पीछे कारण था, मान लो कि वो याचना करते कि आप नहीं आते, कुंती महारानी कहती है आते हैं, अगर वो लोग याचना करें ना करें वो आप आते हैं, क्यों मालूम है, ये जो 3 लोग हैं जिनका वर्णन हुआ है ब्रह्मा जी बड़े बड़े लोग हैं, आपका अपार करुणा है ना, अपार करुणा, करुणावश लोग आपको याचना करें ना करें आप आएंगे, आकीला करेंगे, किसके ऊपर करुणा है, दीन लोगों के ऊपर करुणा है, उन दीनों को उद्धार करने के लिए आप प्रकट होते हो, जो लोग याचना नहीं करते आपकी उन लोगों का भी आप उद्धार करने आते हो, उनका उद्धार कैसा होता है, उनका उद्धार होता है जब आपका ये जो दिव्य लीलाएं हैं उनका श्रवण कीर्तन करेंगे, ये दीन लोग किस प्रकार है उनका वर्णन करते हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमाणायाम् अविद्या काम कर्म भी, भवेस्मिन इस भवसागर में भौतिक जगत में भवेस्मिन क्लिश्यमाणायाम अनेकों दुखों को अनुभव कर रहे हैं, क्यों दुखों का अनुभव कर रहे हैं, क्लिश्यमाणायाम अविद्या के वजह से दुखों का अनुभव कर रहे हैं, अविद्या के वजह से क्यों दुख है, कर्म भी अनेकों अनेकों कार्य कर रहे हैं, कर्म के बंधन में फंसे हुए, क्यों कामना, अविद्या की वजह से कामना, कामना की वजह से कर्म, तो इसके वजह से सब लोग दुखी हैं, और ये जो लोग हैं हे भगवान प्रकट हो जाइए, कोई आचरण नहीं कर रहा है ना, वो पुण्य श्लोक है, उन लोगों के लिए आप प्रकट होते हो, आपकी प्राकट्य के पीछे ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, असुरों को मारना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है, क्यों असुरों को मारना, क्या असुर के हृदय परमात्मा के रूप बैठे हो ना, उधर से निकल जाओ खत्म हो जाएगा असुर, हाँ अंदर ही बैठे हैं कि नहीं, उधर ही सांस खत्म कर दो उनका कुछ हो जाएगा, तो भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं तो आप आध्यात्मिक जगत में लेके आनंद प्रदान करो उनको, भगवद्गीता में आप जानते हो कि भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे क्या परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, उस तो की तात्पर्य हम देखते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम, दुष्कृतियों को असुरों को मारने के लिए भगवान प्रकट होते और साधुओं को रक्षा करने के लिए आनंद देने के लिए प्रकट होते। दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? भक्तों को आनंद प्रदान करना उनका महत्वपूर्ण कारण है। एक बुद्धिवाणी कहते हैं भक्तों को आनंद प्रदान आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि जो इस जगत में अनेकों अनेकों जीव हैं, जो अनेकों अनेकों दुखों का अनुभव कर रहे हैं, वो इतना दुखों में मग्न है कि आपको प्रार्थना भी नहीं करते। दे डोंट इवन प्रे। एक्चुअली पिछले कुछ श्लोकों में कुंती महारानी ने अपना अनेकों अनेकों बातों को कहा था कि जहां उन्होंने कहा, कुंती महारानी ने कहा कि हे भगवान अनेकों अनेकों दुखों से हमको बचाया है, तो उसमें भी कुंती महारानी देवकी और वसुदेव की बात कहती, देवकी नंदनाय च। देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया था। कुंती महारानी कहते हैं कि मेरे सौभाग्य है कि मैं तो आपको प्रार्थना भी नहीं की थी, बहुत सारे दुख आए लेकिन प्रार्थना किए भी ना आपको हमको बचाए, ये हमारा विशेष कृपा है। ऐसे ही जो अभक्त होते हैं भगवान से प्रार्थना ही नहीं करते क्योंकि बहुत बिजी है वो लोग। किस में बिजी हैं? बिजी हैं दुख भोगने में, बिजी इन सफरिंग। तो कभी एक बार एक व्यक्ति आया मिलने के लिए, मैंने पूछा कि क्यों मंदिर में क्यों नहीं आते, मैं बहुत बिजी हूँ। तो कुछ समय के बाद ऐसे बातचीत में क्या क्या चल रहा है, मतलब बहुत दुख है। तो मैंने कहा यू आर बिजी फॉर सफरिंग, बिजी इन सफरिंग। तो चौंका गया, यस इट इज ट्रू, पीपल आर बिजी इन सफरिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर कोई अच्छे काम में अगर व्यस्त है, खुश है, तो ठीक है, बिजी हो, यू बी बिजी इन हैप्पी, नो प्रॉब्लम इन बीइंग हैप्पी, बट बिजी इन बीइंग सफरिंग, अभी इसको क्या करें, उसको मुक्तता ही कहा जाए। इसलिए भवेस्मिन क्लिश्यमाणायाम, सब लोग दुखी है। तो दुख का कारण को सारांश में वर्णन कर रहे कुंती महारानी। आप सबको मालूम है भक्ति साम्र सिंधु का भी ये सब्जेक्ट है। जो हम अभी दुख को अनुभव कर रहे हैं, दुखों का इमीडिएट कॉज क्या है? इमीडिएट कॉज है हमारा कर्मबंधन। कर्मबंधन ही हमारा दुख का कारण है। और ये कर्मबंधन क्यों है? बिकॉज ऑफ डिजायर, कामना। और ये कामना क्यों है? कामना इसलिए है क्योंकि हमने कृष्ण को अविद्या की वजह से है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वी हैव मटीरियल डिजायर्स, बिकॉज ऑफ मटीरियल डिजायर्स भौतिक इच्छाओं की वजह से हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। कर्म मतलब पाप, तो पाप करते हैं, उसका परिणाम क्या है? दुख। तो ये अविद्या क्या है? अविद्या कहां से आया? अविद्या है कृष्ण की विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण, कृष्ण की विस्मृति जो है वो अविद्या है। अविद्या की वजह से इच्छा प्रकट होती है, इच्छा से पाप करता है और पाप की वजह से दुख भोगता है। इसी बात को कुंती महारानी कहती हैं, भवेस्मिन क्लिश्यमाणायाम अविद्या कामकर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। अविद्या कामकर्म भी, जब आप प्रकट होकर अनेकों अनेकों लीलाएं करते हैं, लीला करने के द्वारा उन लीलाओं को लिपिबद्ध किया जाता है गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों में। जब इस ग्रंथों को आप लीलाओं को श्रवण स्मरणार्हाणि, श्रवण कीर्तन कोई करता है, करिष्यन्ति केचना, जब श्रवण और स्मरण करता है तो क्या होगा? उन लोग ये जो चक्र है, हाँ, ये जो दुख भोगने का जो चक्र है उसपे मुक्त हो सकता है। यानी आपका प्राकट्य का सर्वोच्च उद्देश्य ये है कि मेरे प्रकट होके अप्रकट होने के बाद भी निरंतर हमेशा उसका फायदा लेके लोग उद्धार हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। इसलिए भगवान जब प्रकट होते हैं, प्रकट होने के समय ही लोगों का फायदा नहीं होता है। अगर पिछले तीन श्लोकों के हिसाब से देखा जाए, भगवान प्रकट होते हैं उसी समय लोगों का फायदा होता है। वसुदेव देवकी का हुआ, यदु का हुआ, और युधिष्ठिर महाराज का हुआ, और पृथ्वी माँ का हुआ, या असुरों को मारा होता में हो गया, उसके बाद नहीं। वास्तविकता में भगवान की जो प्राकट्य जो है इसलिए होता है ताकि प्रकट अप्रकट होने के बाद भी, उनकी अप्रकट लीला में भी, यानी इस भौतिक जगत में अभी भी हमेशा लोग उनके लीलाओं का, उनकी शिक्षाओं का श्रवण कीर्तन करें, जिसके द्वारा उनका भी उद्धार हो। यानी जो लोग भगवान को प्रार्थना भी नहीं करते उन लोगों की उद्धार के लिए गीता भागवत को छोड़ते हैं, उनकी लीलाओं को छोड़ते हैं। वैसे भगवान तीन चीज़ों को छोड़ते हैं जब अपने धाम में स्वधाम में जाते हैं। एक है उनके लीलाएं, उनकी शिक्षाएं यानी उनके ग्रंथ, दूसरा है उनका अर्च विग्रह, और तीसरा है उनका धाम। ये तीन चीज़ें जो हैं भगवान के लीलाओं का स्मारक है। हाँ, भगवान प्रकट हुए थे करके क्या सबूत क्या है, वृंदावन सबूत है। हाँ, दूसरा उनके विग्रह, राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा माधव, ये विग्रह सबूत हैं। और तीसरा क्या है, शास्त्र है। इसके अलावा तो कोई और सबूत तो है नहीं, देयर इज नो अदर, क्योंकि यही छोड़ के जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब ये तीन को छोड़ के जाते हैं, जब लीला या शास्त्र पढ़ते हैं लोग उनको समझ में नहीं आता। दूसरी बात है जब विग्रह को देखेंगे सोचेंगे तो पत्थर है। इसलिए पंचरात में कहा गया है भगवान के विग्रह जो है और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गया पंचरात्र में, जब कोई बाढ़ आता है, कोई बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद समाप्त हो जाता है बाढ़, तो बाढ़ समाप्त होने के बाद अब उस जगह जाओगे तो क्या होता है, जहाँ जहाँ नीचे थी ज़मीन उधर पानी भरा हुआ रहता है, यानी जिस जिस रूप में ज़मीन है उस रूप में वो पानी जमा रहता है। वो सब बाढ़ के स्मारक है कि नहीं, दे आर ऑल द इंडिकेशंस दैट फ्लड हैड कम। तो ये अर्चविग्रह भी वैसा ही है। भगवान का जो लीला जो कंटिन्यूसली चलता था, उनकी प्रकट लीलाएं जो प्रकट हुए थे, अप्रकट होने के बाद उन लीलाओं का कुछ पिक्चर्स है, वही अर्चविग्रह है। यानी दूसरे शब्दों में अर्चविग्रह भी एक लीला अवतार है, एक लीला है, इसलिए उनका अर्चावतार कहा गया है। तो ये तीसरा, दूसरी बात है। तीसरा क्या है, धाम। जब कोई धाम जाता है बद्ध जी, वो सोचता है कि क्या है, देखो कितना अच्छा बिजनेस हो सकता है इधर, बहुत लोग आ रहे हैं, चलो दुकान खोल के बैठ जाता हूँ। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने ये तीन चीज़ों को समझाने के लिए एक गुरु को भेजते हैं, अपने प्रिय भक्त को भेजते हैं, जिसके द्वारा हमको ये शास्त्र गुरु के द्वारा प्रकट होता है। अर्च विग्रह क्या है, उनकी सेवा प्राप्त होता है, उनकी दिव्यता हमको मालूम पड़ती है, सेवा प्राप्त होता है। और तीसरा चीज़ क्या है, गुरु वो हैं जो धाम को प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की योजना है किस प्रकार बद्ध जीवों को अपने पास वापस लेके जाए। आप प्रकट होते हो टू रिक्लेम द कंडीशन सोल्स। इसी बात को भागवतम के पहले स्कंद में वह ही जब पूछा गया था भगवान क्यों प्रकट होते हैं, आप सबको मालूम है पहले अध्याय के पहले कुछ श्लोकों में उन्होंने पूछा था, छः नैमिषारण्य के छः ऋषियों ने पूछा था कि कौन सा ग्यारहवा, सूत जानादि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्या जातो इस चिकीर्ष्या। ये प्रश्न था। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए दूसरे अध्याय के आखिरी में वो लोग कहते हैं, हे भगवान आप प्रकट होते हो, किसके लिए प्रकट होते हो, ताकि लोग जो है आपकी लीलाओं को श्रवण कीर्तन करके वापस जाए। भगवत्येष सत्वेन लोकान्वय लोकभावना लीलावतारानुरतो देवतिर्यन नरादिषु। भगवान प्रकट होते हो अलग अलग रूपों में, अलग क्योंकि लोकान्वय लोकभावना लीलावतारानुरतो अलग अलग लीलाएं करते हो, क्यों करते हो, भावयित्येष सत्वेन लोकान्वय लोकभावना, भावयित्येन सत्वेन लोकान्वय लोकभावना, आप लोगों के अंदर आपकी प्रति भावना को जागृत करने के लिए इन लीलाओं को करते हैं। उन वो जैसे आपकी प्रति भावना जागृत होता है, भक्त बनता है तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाता है। तो इसी बात को कुंती महारानी कह रहे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कृष्णास अपियरेंस इज फॉर द कंडीशन सोल्स, के भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत हो, यानी बद्ध जीवों के हृदय में भक्ति जागृत हो, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अभी जैसे लीलाओं को श्रवण करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है तुरंत, उसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है, किस प्रकार वो आनंद को अनुभव करते हैं श्रवण कीर्तन करने के द्वारा, उसका वर्णन कुंती महारानी अगले श्लोक में कहती है। तो कल और परसों दो दिन हैं, जो बाकी बचे हुए श्लोक हैं हम समाप्त करने के प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।